नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं किरण शर्मा। मुख्य समाचार। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ जारी तनाव को न युद्ध न शांति की स्थिति बताया, साथ ही भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों पर भी प्रकाश डाला। दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोगों की मौत। अमेरिका द्वारा 5,000 सैनिकों की वापसी की घोषणा के बाद जर्मनी ने यूरोप से अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत करने का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज रात जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के 3 देशों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने आज ईरान और इसराइल अमेरिका गठबंधन के बीच चल रहे तनाव को न युद्ध न शांति वाली स्थिति बताया। बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री इलाही ने कहा कि ईरान ये संघर्ष नहीं चाहता था, लेकिन लगातार हो रहे हमलों के बीच उसे जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। भले ही बातचीत जारी रहने की उम्मीद थी, उन्होंने तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक स्थिरता उन लोगों की कार्रवाइयों पर निर्भर करती है जिन्होंने शत्रुता शुरू की थी। ईरान में मौजूदा स्थिति के बारे में श्री इलाही ने कहा कि हालात स्थिर बने हुए हैं और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि उन्होंने मौजूदा स्थिति अस्थिरता को अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से जोड़ा। श्री इलाही ने भारत के साथ ईरान के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर भी प्रकाश डाला और भारत को एक महान देश बताया जिसका ईरान बहुत सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का साझा इतिहास 5,000 वर्षों से भी अधिक पुराना है, जिसकी जड़ें शिक्षा, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता और आर्थिक संबंधों में जुड़ी हुई हैं। श्री इलाही ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध, सहयोग और तालमेल बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को ईरान द्वारा दी जाने वाली सुविधा इन संबंधों को दर्शाती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी ईरान और भारत के बीच संबंध और अधिक मजबूत होंगे। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती हैं तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटने के लिए कहा गया है। दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए और कई घायल हो गए हैं। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्ला और इसराइल के बीच मौजूदा युद्धविराम के बावजूद झड़पें जारी हैं। इसराइल की सेना ने क्षेत्र के 9 गांवों के निवासियों को इलाका खाली करने की चेतावनी देने के कुछ समय बाद ये हमले किए। इस बीच हिजबुल्ला ने कहा कि उसने तटीय गांव बायद में एक घर में मौजूद इजरायली सैनिकों पर ड्रोन हमला किया। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमरीकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उनकी ये टिप्पणी पेंटागन द्वारा कल की गई उस घोषणा के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि ईरान संघर्ष और व्यापारिक शुल्कों को लेकर बढ़ते तनाव के चलते अमरीका जर्मनी से 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। श्री पेट्रियोसिस ने यूरोप से अपनी सुरक्षा की अधिक जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया और कहा कि जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति और बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है। जर्मनी में अमरीकी सैन्य उपस्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई और शीत युद्ध के दौरान 1960 के दशक में चरम पर पहुंच गई, जब सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए लाखों अमरीकी सैनिक यहां तैनात थे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 मई तक जमैका, सूरीनाम, त्रिनाद और टोबैगो की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार यात्रा के दौरान वे तीनों देशों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे। इन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ होने वाली चर्चा में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र की यातना विरोधी समिति ने पाकिस्तान द्वारा बच्चों और अफगान शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर निर्वासन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। समिति ने एक सम्मेलन में पंजीकृत शरणार्थियों सहित अफगान नागरिकों के खिलाफ की गई पाकिस्तान की जबरन कार्रवाइयों पर अपनी रिपोर्ट पेश की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
समिति ने कहा कि पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों का उद्देश्य उन्हें उत्पीड़न, यातना या दुर्व्यवहार के बावजूद अफगानिस्तान लौटने के लिए मजबूर करना था। समिति ने अफगान शरणार्थियों के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपों की गहन जांच की भी मांग की और दोषियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का आह्वान किया। समिति ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी सहित कार्यकर्ताओं इदरीस खट्टक, अली वजीर और महरंग बलूच पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी हिरासत की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र के कार्य समूह द्वारा की गई है। इसमें चिकित्सा देखभाल तक पहुंच की कमी को लेकर चिंताएं भी शामिल हैं। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
केन्या में मूसलाधार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में आई बाढ़ और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत हो गई। भूस्खलन से एलगियो मार्क्वेट काउंटी के कुछ हिस्से भी प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार क्वाले काउंटी और किटुई काउंटी में 2 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना फ्रांस से होगा। लक्ष्य सेन चोट के कारण इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। लक्ष्य की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट पर उतरेंगे। क्वार्टर फाइनल में कल भारत ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान ने अमरीका और इसराइल के साथ जारी तनाव को न युद्ध न शांति की स्थिति बताया, साथ ही भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों पर भी प्रकाश डाला। दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोगों की मौत। अमरीका द्वारा 5,000 सैनिकों की वापसी की घोषणा के बाद जर्मनी ने यूरोप से अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत करने का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज रात जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के 3 देशों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।